फ्रूट जूस लेते हैं। सब लोग कहते हैं फ्रेश फ्रूट सो हेल्दी। क्या व्हाट हेल्दी? वेरी अनहेल्दी। वो सिर्फ फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज वर्स्ट काइंड ऑफ शक्कर। फैटी लिवर होती है, ब्रेन में डिमेंशिया होते हैं, अल्जाइमर्स होते हैं, हार्ट डिजीज होती है, और ये शुगर के वजह से। रेड बुल बहुत खराब है हेल्थ के लिए।
सबसे बेकार डिजर्ट होती है, इज द वर्स्ट वन एंड द बेस्ट।
वर्स्ट इज डेफिनेटली जलेबी। इट्स जस्ट फ्राइड शुगर सिरप।
शुगर से डायबिटीज होती है?
शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती। शुगर खाने से अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज बढ़ती है।
कितना सोना चाहिए इंसान?
स्लीप की गहराई कितनी है वो ज्यादा महत्व रखती है देन द नंबर ऑफ आवर्स।
ब्लैक कॉफी इज गुड
फैटी लिवर के लिए, बहुत अच्छा है।
इज इट प्रूवन कि ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी में प्रॉब्लम्स होती है?
एक्स्ट्रा प्रोटीन can elevate your mTOR and cause cancers and reduce your lifespan.
7-day water fasting agar life mein ab ek baar bhi karte ho to aapke cancer ke chances 70% reduce ho jate hain.
Sab dead cells, damaged cells wo nikal jate hain, naye cells hote hain wo 7 days ke period mein.
Foreign countries bahut hota hai ki wahan par na log health history check karte hain before marrying. India mein nahi karte hain. Aapko lagta hai karna chahiye? Aaj ka hamara episode bahut zyada myth breaking hai. मेरे बहुत सारे बिलीफ टूट गए। जैसे कि मैं रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले ऑरेंज जूस पीता था, फ्रेशली स्क्वीज, नो शुगर नो आइस। पर वो बहुत ख़राब है। और वो क्यों ख़राब है, इसके बारे में हमने बात करी आज। कैसे 7-day वाटर फास्टिंग कैंसर होने के चांसेस रिड्यूस कर देता है, इस बारे में बात करिए। ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, उसका रियल रीज़न कुछ और है, इस बारे में हमने बात करिए। ऐसे न जाने कितने सारे टॉपिक्स हैं ऑन विमेन्स हेल्थ, मेन्स हेल्थ, हमारी ओवरऑल पूरी फैमिली की हेल्थ। कौन सी सी चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे हैं, कौन सी सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम खुद को बोल तो देते हैं कि हेल्दी है पर एक्चुअली हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म कर रही है, इस बारे में आज का एपिसोड है। तो अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो तो प्लीज़ अपनी पूरी फैमिली को बुलाओ और उन सब के साथ देखो या उन सब के साथ ये शेयर करो, क्योंकि ये एपिसोड पूरी फैमिली की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विथ डॉक्टर विशाखा। बट बिफोर यू स्टार्ट दिस, गो सब्सक्राइब राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स चैनल, क्योंकि वहाँ पर हम इस पूरे बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप कम समय में एक बेहतर इंसान बन सकें। एंजॉय द शो। फास्टिंग करनी चाहिए?
जरूर करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए
फास्टिंग।
सबको करनी चाहिए।
इंटरमिटेंट फास्टिंग की ओवरऑल फास्टिंग? ओके, मतलब दो टाइप की फास्टिंग होती है ना,
एक बहुत, तो बहुत किस्म की फास्टिंग होती है।
अच्छा, तुम बताओ तीन चार टाइप की फास्टिंग कौन सी होती है?
एक तो रैंडम फास्टिंग करते हैं जैसे हमको रिलीजन में बताया गया है ना, एंड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस रिलीजन्स में बताया गया है। यू सी होली मंथ ऑफ रमदान फास्टिंग करते हैं, उनकी फास्टिंग बिल्कुल अलग होती है। जैनिज्म में देखो परुषण, टोटली डिफरेंट वाटर फास्ट उनकी, बिल्कुल अलग होती है। यू लुक एट अक्रॉस बोर्ड, वेदर यू लुक नवरात्रि, यू लुक एट शिवरात्रि, अभी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग 16-8, 12-12, आई कॉल इट ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, पर नया नाम दे दिया, मार्केटिंग हो गई, ठीक है ठीक है। बट फास्टिंग वी डू अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड फास्टिंग हेल्प्स यू पीरियड।
ओके,
या जैसे भी करना है, कौन सा भी फास्ट करना है, लेकिन कर लो। बहुत से मैकेनिज्म्स हैं जिससे आपको फायदा होगा, लेकिन अंडर मेडिकल गाइडेंस करना है, क्योंकि
फास्टिंग मेडिकल गाइडेंस के अंदर।
हाँ, बिकॉज जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या हम 16-8 करते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, या 5-2 करते हैं अलग किस्म का फास्टिंग है, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें अगर आपको हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो, आपको थायराइड की बीमारी हो, आपको डायबिटीज हो, तो फिर आपको फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, माइग्रेन्स हो सकते हैं, ब्लड शुगर गिर सकता है, ब्लड शुगर सवेरे ज़्यादा हो सकता है जिसको हम डॉन इफेक्ट कहते हैं। फिर पेशेंट बहुत नर्वस हो जाता है और फिर आके कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो दैट हैज़ टू बी डन अंडर मेडिकल गाइडेंस, क्योंकि बहुत से जैसे समझो डायबिटिक्स हैं, वो दवाई ले रहे हैं ब्लड शुगर को घटाने के लिए, तो उनका ड्रॉप हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया मेडिकल इमरजेंसी है, थोड़ा शुगर ऊपर गया कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया मेडिकल इमरजेंसी है, विल टेक यू स्ट्रेट टू हॉस्पिटल एंड आईसीयू।
हाइपोग्लाइसीमिया मतलब
कम शुगर होना, बहुत ड्रॉप होना, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत हो जाता है। सो इसलिए यू हैव टू डू इट अंडर गाइडेंस। देखिए, नो टू पीपल आर द सेम। आपका माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम जो है, जो बैक्टीरिया है, मेरे से अलग है। आपका फैमिली हिस्ट्री जरूर मेरे से अलग है, आपका ब्लड रिपोर्ट मेरे से अलग है, तो फास्टिंग सेम कैसे कर सकें सब? जो हम रिलीजन के नाम पर करते हैं वो 5 days a week, 7 days a week पूरी जिंदगी के लिए नहीं करते, वो शॉर्ट बर्स्ट में होता है। इसलिए तभी अगर आप मेडिकल गाइडेंस नहीं करो चल जाएगा, लेकिन ये वे ऑफ लाइफ है जो आउट ऑफ 360 days समझो 200 days करते हैं, ये अलग बात है। फिर
इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो यू फील कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो ट्रेंड है हर कोई फॉलो करने का बोल रहा है, बहुत बेनिफिट्स हैं, ये है वो, हर किसी को करना नहीं चाहिए।
सबको करना चाहिए, मैं भी करती हूँ, मैं हफ्ते में 3 बार करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आप गाइडेंस लेके फिर कीजिए और आप देखिए कि आप 7 days हफ्ते में ना कीजिए। देखो एक चीज़ होती है मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो अगर हम शादी हो गई किसके घर में या हम हॉलिडे पर चले गए तो हम 7 दिन हफ्ते में थोड़ी करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो ऐसे ही होना चाहिए कि थोड़े दिन अगर हम नहीं करें तो उसका इल इफेक्ट नहीं होने वाला, बैकफायर नहीं करने वाला। तो आप 7 दिन हफ्ते में ना करें, 4 दिन 5 दिन सब लोग कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और ह्यूज बेनिफिट्स, जिसको भी अगर डायबिटीज़ हो, जैसे भी हो, पॉलीसिस्टिक हो, आपको वेट घटाना हो, डायबिटीज़ की अगर यू नो ठीक से करें तो डायबिटीज़ नहीं होगा, मोटापा तो नहीं होगा, दैट्स द आइडिया। जिसको वेट घटाना है वो भी कर सकते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली फैट लॉस होता है, नॉट मसल लॉस। तो इन फास्टिंग कौन सा भी नाम दे दो लेकिन बहुत बेनिफिशियल है।
बट सबको अपने अपने हिसाब से करनी चाहिए, अपनी बॉडी के हिसाब से, तो मेडिकल गाइडेंस के अंडर करनी चाहिए।
एब्सोल्युटली करेक्ट।
इंस्टाग्राम पे रील देख के नहीं स्टार्ट
करना। ओह माय गॉड, और कोई इन्फ्लुएंसर ने कह दिया पैंट मोटा हो गया, कम हो गया, ऐसा कर लो, यू नो मोटिवेशंस लेके, ऐसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
यू नो आई वाज वाचिंग अ रील, बट मैं एक रील देखी और उसमें मैंने फिर जाके गूगल करा भी, पढ़ा भी, और सही में भी एक बॉस्टन में रिसर्च पेपर है, बॉस्टन इंस्टीट्यूट में, बॉस्टन कॉलेज का, आई थिंक बॉस्टन कॉलेज या यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी का कॉलेज का समय लगे सब, मैंने बॉस्टन रिसर्च पेपर है, वेर इट इज 7 डे वाटर फास्टिंग अगर लाइफ में आप एक बार भी करते हो तो आपके कैंसर के चांसेस 70% रिड्यूस हो जाते हैं। सो अगर 7 डे वाटर फास्टिंग करते हो सो कैंसर के चांसेस 70% रिड्यूस हो जाते हैं। मुझे पहले ऐसा लगा ये क्या, कौन बकवास कर रहा है, लाइक बिकॉज सुनने में ऐसा लगता है ना कैंसर 7 डे वाटर फास्टिंग, मतलब क्या इसका रिलेशन भी क्या है, कैसे, राइट? बट देयर वाज रिसर्च डन एंड अपेरेंटली वो रिसर्च को पब्लिश करने भी दिया है।
ऑफ कोर्स डॉक्टर जेसन फंग ने किया है रिसर्च एंड डॉक्टर वॉल्टर लॉन्गो। डॉक्टर जेसन फंग इज डन इट प्रेडोमिनेंटली कैंसर के लिए एंड उसका मेडिकल सिग्निफिकेंस मैं बताती हूँ। आफ्टर 12 to 16 hours आपको बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना, नहीं तो हम सब मर जाएंगे 16 आवर्स के बाद या 20 आवर्स के बाद फास्टिंग के लिए। तो इफ इट हैज टू गो थ्रू 7 days बिल्कुल खाना पीना के बगैर, तो द आइडिया इज कि नए सेल्स जनरेट होते हैं और जो पुराने सेल्स हैं देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेजी। ये समझो जैसे घर में हम झाड़ू चिंदी कैसे करते हैं साफ सफाई के लिए, वैसे हमारे शरीर में झाड़ू हो जाता है ब्रूम लेके, उसको ऑटोफेजी कहते हैं। सब डेड सेल्स, डैमेज सेल्स वो निकल जाते हैं और नए सेल्स प्रोलिफरेट होते हैं, नए सेल्स होते हैं वो 7 days के पीरियड में, तो उसको अपोप्टोसिस कहते हैं, जहाँ ओल्ड सेल्स निकल के नए सेल्स आ जाए। तो इस वजह से जिनको चांसेस है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, या जिसको ग्रेड वन है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ये सब हमेशा मेडिकल गाइडेंस।
आई वॉज रीडिंग एंड टेल मी इफ इट्स ट्रू और नो। फर्स्ट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ मच स्लीप, कितना सोना चाहिए इंसान को?
तो एक्चुअली इट्स नॉट द नंबर ऑफ आवर्स, लेकिन स्लीप की गहराई कितनी है वो ज्यादा महत्व रखती है देन द नंबर ऑफ आवर्स। जैसे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखिए, वो खुला कहते हैं कि मैं 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोता, बट ही इज सो एक्टिव एंड सो फिट एंड सो हेल्थी, एटलीस्ट ही लुक्स हेल्थी, आई होप ही इज। लेकिन तो इट्स नॉट द नंबर ऑफ आवर्स, जितना तो आप टेक्स्ट बुक में लिखें तो दिखाई देगा कि 6 घंटे 7 घंटे सोना ज़रूरी है, पर अगर आप 7 घंटे हर रोज सोएं लेकिन आपका क्वालिटी डीप स्लीप नहीं है तो मतलब नहीं है। तो इसलिए वी हैव लॉट ऑफ डिवाइसेज, अभी आप ऑरा रिंग पहन सकते हो, आप फोन पर चेक कर सकते हो।
आई ट्रैक माय स्लीप,
तो आपको पता है। तो इट्स द डीप स्लीप, और डीप स्लीप के लिए हम काफी कुछ कर सकते हैं जो हम स्लीप हाइजीन बुलाते हैं। तो वो करने से हमको फोन की जरूरत या ऑरा रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी नो आवर बॉडी विल टेल अस। जब सवेरे जब आप उठते हो आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होगी, सो यू वॉन्ट फील ड्राउजी, यू नो मेरे को क्या करना है, आई वॉन्ट टू गो बैक टू स्लीप, ऐसा नहीं होगा। सो यू आर रेडी टू ब्रेस द डे. तो अगर आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छी हो, अगर आपको दोपहर को नींद नहीं आती मतलब, तो आपको पता है कि आपने आपकी नींद अच्छी है और काफी चीज हम करते हैं अच्छी स्लीप के लिए, बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल. क्योंकि इतने लोग आते हैं स्पेशली जिनको ज्यादा स्ट्रेस होता है, जिसको नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आती, तो आप रूम टेम्परेचर कम रखें, जितना भी कम रख सकें, 20 डिग्रीज अगर हो सके तो दैट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर गुड स्लीप. ऐसे स्टडीज में भी एस्टेब्लिश्ड है. हम जो पूरा टाइम फोन देखते हैं, वो ब्लू लाइट को ब्लॉक कर लें एटलीस्ट 2 hours बिफोर यू स्लीप. मैं अपना फोन 1 घंटे पहले दूसरे रूम में रख देती हूँ. बहुत लोग कॉफी पीते हैं, कैफीन पीते हैं, वो डायरेक्ट असर करता है क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए.
तो सुबह से लेकर रात तक कभी कैफीन नहीं पीना चाहिए, एक टाइम बाद नहीं
पी सकते हैं, मैं मर जाऊं कैफीन के बगैर. तो बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन कैफीन का जो हम कहते हैं हाफ लाइफ, मतलब जितना टाइम वो शरीर में रहता है, वो 10 to 12 hours है. तो अगर आप 12 बजे रात को सोते हैं, तो उस हिसाब से मैथ करके समझो 12 बजे या 2 to 2 o'clock, 2 p.m. तक कैफीन के उसके बाद और ना पिए. और कॉफ़ी, टी में भी कैफीन होता है, चॉकलेट में भी कैफीन होता है. तो कोई लोग काफ़ी कैफीन सेंसिटिव हैं, तो उनको डार्क चॉकलेट आप एक पीस दे दो, पूरी रात
जगे रहेंगे.
हाँ बिल्कुल. तो यू हैव टू सी आपका बॉडी कैसे है. आई हैव पीपल जो रात को 10 बजे कॉफ़ी पीते हैं, 11 बजे और सो जाते हैं. तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं.
मैं
सो एग्जैक्टली हम इसको बायो इंडिविजुअलिटी कहते हैं.
मैं रेड बुल पी के सो सकता हूँ.
और रेड बुल बहुत खराब है हेल्थ के लिए.
आई लव रेड बुल,
डजंट मेक इट गुड फॉर यू. या तो आप ब्लू लाइट, एलईडी लाइट, टेलीविजन, ये सबको एलिमिनेट कर ले 2 घंटे के लिए, कैफीन ना ले. एक्सरसाइज 2-3 घंटे सोने के पहले, क्योंकि उससे एंडोर्फिन्स होती है.
एक्सरसाइज करें
नहीं करें
राइट. एग्जैक्टली
बिल्कुल नहीं करें.
ओके, एक्सरसाइज सोने से पहले एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए.
बिल्कुल.
कब तक नहीं करनी चाहिए?
2-3 hours. ठीक है. बिकॉज उससे ब्लड प्रेशर पहले यू नो ऊपर जाता है, पल्स रेट ऊपर जाता है. यू नीड टू बी इन अ स्टेट ऑफ काम ना स्लीप के पहले. आपकी बेडिंग ठीक हो, पिलो ठीक हो, तकलीफ ना हो यू नो सोने में, गर्दन में ना हो. अगर आपको स्लीप के सप्लीमेंट्स चाहिए, तो आई प्रिफर सप्लीमेंट्स ओवर स्लीपिंग पिल्स एनी डे. तो मेलेटोनिन बहुत अच्छा है स्लीप के लिए, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है स्लीप के लिए. तो आप पहले ये चीज ट्राई कर लो ना, फिर
उधर जाना.
हाँ बिल्कुल.
ओके, 2-3 questions. 1, बहुत लोग रात को सोने से पहले वॉक करते हैं. तो वो एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, किसी के लिए थोड़ा हार्ड होता है वो करना. तो डू यू थिंक लोगों को करना चाहिए?
Well, किसके लिए वॉक कर रहे हैं, क्यों वॉक कर रहे हैं पहले वो तो
जिस खाने के बाद, डिनर के बाद, आई डोंट नो क्यों बस बोलते हैं डिनर के बाद करना चाहिए. हार्ट रेट बेटर होता है 35 to 40 minutes वॉक करते हो तो.
एक्चुअली 2 चीजें, जिनको हार्ट की बीमारी हो चुकी है उनको खाने के बाद कभी वॉक नहीं करना चाहिए. बिकॉज इट टेक्स द ब्लड सप्लाई अवे फ्रॉम द हार्ट. तो जब हम वॉकिंग करते हैं पेरिफ्रीज को, क्योंकि हमको फीट में, हाथ में एनर्जी चाहिए तो वॉकिंग के लिए. तो जिसको हार्ट की तकलीफ हो चुकी है वो
खाने के पहले करते हैं.
हाँ.
और जिनको हार्ट की तकलीफ नहीं हुई वो खाने के बाद करते हैं.
तो बहुत लोग खाने के बाद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डाइजेशन होगा और यू नो वेट कम हो जाएगा, ऑल ऑफ दैट. लेकिन अगर आप ऐसे वॉकिंग कर रहे हो कि आप टहल रहे हो गार्डन में, तो आप कर सकते हैं उसमें, और नींद में फिर
कोई नहीं आएगी
बिल्कुल. लेकिन अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो तो बैड आइडिया.
ओके, बिफोर स्लीपिंग ब्रिस्क वॉकिंग इज बैड आइडिया?
यस एब्सोल्युटली. आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा, इट्स नॉट, इट्स गोना मेक यू एक्टिव. तो एक्टिविटी ज्यादा है, आपको बिल्कुल काम होना है.
ओके, अपार्ट फ्रॉम स्लीप वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, यू सेड स्लीपिंग पिल्स के बारे में, राइट? स्लीपिंग पिल्स में मैग्नीशियम और मेलेटोनिन, राइट? इसके ऊपर बड़ी डिबेट चलती है. व्हाट इज बेटर, मेलेटोनिन अच्छा होता है बॉडी के लिए कि नहीं?
अगर आप ट्रैवल ज्यादा कर रहे हो और आपका जोन चेंज हो रहा हो, देन मेलेटोनिन सबसे अच्छा है. तो मतलब आप दिन में, मंथ में 30 days नहीं ले रहे हैं मेलेटोनिन, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तभी ले रहे हैं. तो दैट जस्ट कीप्स योर बॉडी इन सिंक, उसके लिए मेलेटोनिन बिल्कुल ठीक है. और मैग्नीशियम आप लॉन्गर टर्म के लिए ले सकते हैं. मैग्नीशियम इज गुड फॉर सो मेनी थिंग्स. वो मेरा शायद फेवरेट विटामिन है. अगर आप अभी आप जिम की बात कर रहे थे, मसल रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, नींद के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर को थोड़ा नीचे ले आता है, जिनको एंग्जाइटी हो, जिनका पल्स रेट थोड़ा ऊपर हो वो नीचे करवाता है. तो इट्स लाइक अ यूनिवर्सल थिंग, सबके लिए काम आ जाता है, बट इट्स नॉट एज पोटेंट जितना मेलाटोनिन है. तो मैं हमेशा कहती हूँ आप मैग्नीशियम हर रोज ले सकते हैं और मेलाटोनिन स्पर्ट्स में ले सकते हैं, जब भी जरूरत हो तभी, एंड दैट टू बॉडी वेट के हिसाब से टेक अ स्मॉल डोज.
बट मेलाटोनिन खराब नहीं होता बॉडी के लिए
लॉन्ग टर्म में हर रोज लेना, क्योंकि मेलाटोनिन नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता है.
एग्जैक्टली.
बट नो, नॉट एट ऑल, वो सिर्फ मिमिकिंग कर रहा है. और कोई नहीं कह रहा है कि आप जिंदगी भर ले लो, अगर आप महीने में 4-5 दिन ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला.
पर एक प्लेसिबो इफेक्ट भी तो होता है कि लोग एक बार मेलाटोनिन लेते हैं और फिर उनको लगता है कि इससे अच्छी नींद आ रही है, 20-30 दिन ले लिया, फिर उसके बाद वो जब नहीं लेते हैं जिस दिन, उस दिन उनको नींद नहीं आती और फिर उन्हें लगता है कि ओ ये तो मेलाटोनिन की वजह से हो रहा है, किसी भी रीजन से हो सकता है.
तो वो लॉजिक से तो मैग्नीशियम से भी होना चाहिए प्लेसिबो इफेक्ट.
बट मेलाटोनिन बहुत ज्यादा होता है बिकॉज मैग्नीशियम इज नॉट नोन फॉर स्लीपिंग राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग. अभी रिसेंटली
कोविड के बाद
से अभी थोड़ा बंद रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम बॉडी में मैग्नीशियम लेना चाहिए, उससे शुगर क्रेविंग कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, और ये सोने का अच्छा नींद आती है, स्लीप एंजाइटी कम होती जाती है, राइट. बट मेलाटोनिन लोगों को लगता है इट्स अ गेटवे ड्रग टू स्टार्ट स्लीपिंग पिल्स इज यूजुअली. मैं सिर्फ गूगल से पढ़ी हुई चीजें बता रहा हूँ, जो इंटरनेट पे जो रील्स में नीचे लोग लिखते हैं. आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन. मैंने ना मेलाटोनिन लिया आज तक, तो मुझे पता नहीं है, बट अब मैंने देखा है लोगों को जिन्होंने मेलाटोनिन स्टार्ट करी और वो अब साल भर हो गया मेलाटोनिन के बिना सोते नहीं है.
तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी मेडिसिन पर, सप्लीमेंट पर, विटामिन पर पूरी जिंदगी निर्भर नहीं होना चाहिए, वेदर दैट इज मेलाटोनिन और मैग्नीशियम और कुछ भी. आप सिर्फ सपोर्ट ले रहे हो ये पीरियड टाइट करने के लिए और फिर रिलाई ऑन योर ओन बॉडी, उतना जरूरी है. और मेलाटोनिन इतना खराब नहीं है, द लॉट्स ऑफ स्टडीज टू शो कि नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट भी है, तो वो एक्चुअली हेल्प भी करता है, मतलब बियॉन्ड स्लीप के लिए. तो जस्ट अगर आप 30 डेज महीने में नहीं लो ठीक होगा.
ओके, एंड क्वेश्चन अगेन, मेलाटोनिन, मैग्नीशियम, विटामिन डी, B12 एंड 50 अदर वाइटमिन एंड सप्लीमेंट्स, सब एक क्लिक पे अमेजोन पे अवेलेबल है, जेप्टो पे अवेलेबल है, ब्लिंकिट पे अवेलेबल है, या कहीं भी आप एक मेडिसिन की दुकान पे जाओ वहाँ से लेके आ सकते हो, राइट. सब ओवर द काउंटर है. तो क्या जो इतने सप्लीमेंट्स हैं लोग सिर्फ इंटरनेट पे या नई ब्रांड कुछ इंट्रोड्यूस करती है उठा के ले लेते हैं, डू यू थिंक दैट्स राइट टू डू?
इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग टू डू. आपको अपनी ब्लड टेस्ट करानी ही करानी होगी, दैट इज नॉन नेगोशिएबल. दो चीज है, ब्लड टेस्ट में जो डिफिशेंसी है और जो आपको सिम्टम्स हैं, जो आपको लगता है, जैसे हमने कहा कि नींद नहीं आ रही या थकावट हो रही है या बाल बहुत झड़ रहे हैं या मुझे यू नो वर्कआउट के लिए कुछ मसल रिकवरी के लिए कुछ चाहिए. देयर आर टू थिंग्स आई ऑलवेज से, वी डोंट ट्रीट द रिपोर्ट, वी ट्रीट द पेशेंट. तो जो आप आके हमें कहें कि मेरे ये सिम्टम्स हैं, उस हिसाब से और ब्लड रिपोर्ट को देख के ही सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, अदरवाइज द रेस्ट विल डू यू मोर हार्म देन गुड.
रियली
100% एंड ओमेगा 369, इट्स सब सप्लीमेंट्स में 369 लिखे होते हैं. 6 और 9 आर प्रो इन्फ्लेमेटरी, वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है. दैट्स द वर्स्ट थिंग फॉर योर हेल्थ. हमें सिर्फ ओमेगा 3 चाहिए ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए, वी नीड स्किन के लिए, वी नीड ओमेगा 3, वी डोंट नीड 6 और 9. हमारे खाने में 6 और 9 इतना ज़्यादा है कि इफ वी इंक्रीज इट सप्लीमेंट में, हमको यूर टेकिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स हार्ट डिजीज. सो हाउ कैन दैट बी गुड फॉर यू? तो जो सप्लीमेंट भी है, सप्लीमेंट पूरी साइंस है, उसको ऐसे नहीं कि सब लोग यही लें. नहीं तो आई जस्ट पुट अप वन ऑन माय इंस्टाग्राम ना कि सब लोग ये ले लो, सब लोग ये खा लो, सब लोग ये पी लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, बस हो गया,
खत्म. बेस्ट है,
जिंदगी भर वही चालू रखो.
ओके, टेल मी, व्हाट डू यू फील कि इंडस्ट्री में या ब्रांड्स में या जो एक लार्जर मेडिकल इंडस्ट्री है या जो
बच्चों को जो सीरियल खिलाते हैं सवेरे सवेरे क्योंकि अच्छा है, या सर्टन सीरियल बिगाड़ है, आई मीन जो भी टिन कैन बॉटल्ड हो, जो हमारे एंसेस्टर्स ने नाम नहीं सुना है वो फूड का, जो फैक्ट्री में बना है, हाउ इज दैट गुड फॉर अस? कैसे हो सकता है? ये सब चीज प्रो इन्फ्लेमेटरी है, ये सब चीज में या तो डालडा या वनस्पति या ओमेगा 6 या ओमेगा 9 है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत खराब है, जो हमारे गट के लिए खराब है, ब्रेन के लिए खराब है, यू पिक द ऑर्गन और उसके लिए खराब है, कि जो फूड सपोज टू बी गुड फॉर यू इज एक्चुअली पॉइजन फॉर यू. सो दैट्स सो रॉन्ग. और कि सिर्फ शुगर से डायबिटीज होती है, व्हाट नॉनसेंस. शुगर से आप सॉल्टेड बिस्किट ले सकते हो, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो बॉडी में वो शुगर है. और ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बट दैट इज द वे इट इज.
ओके, मतलब आई डिडंट गेट इट कि शुगर से डायबिटीज होती है, दैट इज वन.
नहीं, शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती, दैट इज नॉट वन. शुगर खाने से अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज बढ़ती है, यस इट बिकम्स वर्स. लेकिन अगर मैं डायबिटिक ना हूं और अगर मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, मेरा डाइट काफ़ी अच्छा है, मैं स्लिम हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ और मुझे हर रोज़ आइसक्रीम ये खानी है, डज दैट मीन मैं डायबिटिक बन जाऊँगी? बिल्कुल नहीं. लेकिन अगर मैं सवेरे सीरियल खा रही हूँ जो मीठा नहीं हो, सॉल्टेड सीरियल हो, और मैं दोपहर को राइस खाती हूँ जो मीठा नहीं है, या चपाती ज़्यादा खा रही हूँ लेकिन मैं प्रोसेस्ड खा रही हूँ, मैं चिप्स खाती हूँ शाम को जो नमकीन है, स्वीट नहीं है, मैं वो सब खा रही हूँ, मैं बिस्किट खा रही हूँ, नमकीन बिस्किट, मुझे डायबिटीज होना ही है. क्योंकि ऑल सेवरी, ऑल सॉल्टी कार्बोहाइड्रेट शुगर में बदलता है बॉडी में. 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 टीस्पून शुगर है. तो अब अगे अगर आप मैथ कर लो, एक स्लाइस ब्रेड ले लिया आपने, 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसमें, बॉल पार्क, कोई किसमें 12 होगा, किसमें 16 होगा, 15 ग्राम्स, मतलब 4 स्पून शुगर है. आपको लगता है जब आप ब्रेड खाते हो कि आप शुगर खा रहे हो? नहीं, लेकिन इट्स इक्विवेलेंट टू 4 टीस्पून शुगर. तो सवेरे सवेरे आपने समझो 2 या 3 ब्रेड स्लाइस खा लिया. और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप जैम, आपने जैम के साथ खा लिया, आपने ब्रेड खा लिया, सीधा आपका 8 स्पून 12 स्पून शुगर हो गया बॉडी में. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या कहती है कि आपको 9 या 10 टीस्पून शुगर से ज्यादा नहीं लेना. सब लोग आके कहते हैं नहीं नहीं 9 टीस्पून शुगर कौन लेता है, आपने सवेरे ही खत्म कर लिया 9 टीस्पून शुगर
ब्रेड खा के.
ब्रेड खा के अब क्या होने वाला है आप पूरी दिन? और कुछ नहीं.
नो आइडिया अबाउट दिस.
मोस्ट पीपल डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दिस. सो दैट्स व्हाट वी डू, हम एडुकेट करते हैं पेशेंट्स को.
राइस से भी होता है?
सब से होता है, सब कार्बोहाइड्रेट से होता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं खा सकते हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको बैलेंस करना है दिन में, और आपको पर्टिकुलर किस्म, मतलब टाइप से खाना है, ऑर्डर में खाना है, सीक्वेंस में खाना है, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो. जब भी आप कुछ भी लो शुगर, वो बॉडी में कुछ ना कुछ तो करेगा, राइट? वेदर इट्स शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कहीं ना कहीं तो जाना है. लेकिन शुगर कहाँ जाता है? स्पेशली जब हम ये प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, ये फ्रूट जूस लेते हैं, अगर बॉक्स से आया, टेट्रापैक से आया, या फ्रेश फ्रूट से आया, सब लोग कहते हैं फ्रेश फ्रूट सो हेल्दी. क्या, व्हाट हेल्दी? वेरी अनहेल्दी. वो सिर्फ फ्रुक्टोस है. ग्लूकोस ऑल सेल्स इन द बॉडी कैन मेटाबोलाइज. फ्रुक्टोस मोस्टली मेटाबोलाइज होता है लिवर में. और लिवर की कैपेसिटी इतनी है कि वो 60 या 70 ग्राम्स फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज कर सकता है एक गो में. उसके बाद सब जाके फैटी लिवर हो जाता है. और फैटी लिवर की मात्रा हमारे कंट्री में इतनी बढ़ रही है, इट्स नॉट फनी. अभी हम, आई ऑलवेज से नाउ नेक्स्ट डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अभी हम फैटी लिवर और हार्ट डिजीज के कैपिटल होने वाले हैं. हमको इस चीज में प्राउड नहीं होना चाहिए.
आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दिस. यू मीन कि अगर मैं सुबह फ्रेश ऑरेंज जूस पीता हूँ, फ्रेश ऑरेंज से निकाल के स्क्वीज करके अगर मैं फ्रेश ऑरेंज जूस पीता हूँ, तो वो मेरी बॉडी के लिए खराब है?
बिल्कुल खराब है.
बट जबकि वो तो नेचुरल, उसमें कोई शुगर ऐड नहीं करी, सिर्फ वो ऑरेंज है, ऑरेंज से निकाला है. इज दैट बैड?
एब्सोल्युटली बैड. जब आप फ्रूट को ब्लेंडर में डालते हो, मिक्सर में डालते हो, जूसर में डालते हो, यू ब्रेक द सेल्यूलोस लेयर, उसका फाइबर का आप तोड़ दें. जो निकलता है उसमें से, जो हम जूस पीते हैं, वो सिर्फ फ्रुक्टोस है. फ्रुक्टोस वर्स्ट काइंड ऑफ शक्कर, जो हम सिंपलेस्ट शुगर, जो हम कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, सिंपल नहीं खाना चाहिए, फ्रुक्टोज इज द सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट शुगर. वो इंसुलिन को बहुत स्पाइक करता है बॉडी में. तो पहले तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज, फिर वो क्रैश होता है, फिर पूरी पूरे दिन में हमको लगता है कि अरे हमारा एनर्जी लेवल कम हो गया, क्योंकि True. वो क्रैश हो जाता है. तो फ्रूट जूस की वजह से होता है. जब हम फ्रूट जूस पीते हैं, जब सवेरे सवेरे हम फ्रुक्टोस लेते हैं, इससे हमारा ग्लूकोज स्पाइक होता है. नेचुरली ग्लूकोज ऊपर जाएगा, लेकिन उन ग्लूकोज को नीचे लाने वी हैव टू, इंसुलिन को ऊपर जाना ज़रूरी है, नहीं तो शुगर ऊपर जाता है और नीचे नहीं आएगा तो हम सब डायबिटिक बन जाएंगे. हाँ, तो लेकिन हम डायबिटिक नहीं है, मतलब हमारा इंसुलिन ऊपर गया. टाइम ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से मतलब ग्लूकोज अभी इंसुलिन जब ऊपर जाता है उसकी सुनता नहीं है, क्योंकि इतना ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं. जब ये हो जाता है, फैटी लिवर होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, ब्रेन में डिमेंशिया होते हैं, अल्जाइमर्स होते हैं, हार्ट डिजीज होती है, गट में लीकी गट होता है, यू नेम द ऑर्गन, सब कुछ हो जाता है. और ये शुगर के वजह से, अब ये शुगर फ्रुक्टोस और फ्रूट जूस से आया हो, या टॉब्लरॉन से आया हो, या जेम से आया हो, जिससे भी आया हो, नेचुरल या अननेचुरल, हनी से आया हो, जो हम आयुर्वेदा में हनी इज़ वेरी गुड फॉर यू, डजंट मीन आप ये सब चीज़ नहीं ले सकते. लेकिन लेने का तरीका है, सवेरे सवेरे पहले फ्रूट जूस जूस लेना, माय गॉड, प्रॉब्ली द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. तो ईट द फ्रूट, पूरा फ्रूट ले, उसमें फाइबर इतना है. फाइबर हमारे एग्जैक्टली उल्टा, यू टेक ऑल द ऑर्गन्स, उस सबके लिए अच्छा है, गट के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, फूड है गट के लिए. तो आप फ्रूट लो सवेरे सवेरे अगर आपको चाहिए, लेकिन फाइबर के साथ, होल फ्रूट, नॉट फ्रूट जूस.
आई हैव अ क्वेश्चन ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट, कि स्ट्रेस है जो यंग लोगों में बहुत बढ़ते जा रहा है. एटलीस्ट पहले तो पता नहीं होता था लोगों को जब वो स्ट्रेस थे कि वो स्ट्रेस हैवी कि नहीं है. नाउ अवेयरनेस बहुत बढ़ती जा रही, तो लोगों को लग रहा है कि द स्लाइट डिस्कम्फर्ट दैट दे गो थ्रू, उसमें से बहुत एक्चुअल स्ट्रेस भी होता है, बहुत लोगों को स्ट्रेस नहीं होता है, बट देयर इज अ डिस्कम्फर्ट, बट ओवरऑल अवेयरनेस एंड स्टफ इज गोइंग अप, राइट. सो हाउ कैन समबडी मैनेज देयर स्ट्रेस इन डे टू डे लेवल? पहले एक तो ये पता कैसे चलेगी मैं स्ट्रेस्ड हूँ?
सी, थोड़ी स्ट्रेस सबके लिए बहुत अच्छी होती है. टारगेट मीट करना है, पॉडकास्ट टाइम पर शुरू करना है, ठीक से करना है, टीआरपी ज़्यादा हो, फॉर दैट इट्स दैट एक्साइटमेंट, पॉजिटिव स्ट्रेस हमारे लिए बहुत अच्छा है. जब ये स्ट्रेस, पॉडकास्ट आपका ख़त्म हो गया, आपका रन ख़त्म हो गया, टीआरपी आ गए, सब कुछ, लेकिन आपका माइंड फिर भी कॉन्स्टेंटली भाग रहा है, और उस वजह से आपको फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं बॉडी में.
फिजिकल मैनिफेस्टेशन मतलब?
नींद नहीं आ रही ठीक से, वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है. एनर्जी लेवल्स कम हो रही है, दोपहर को काम नहीं करना, फ्रेंड्स को मिलना नहीं, आप इंट्रोवर्ट हो गए, वो सब स्ट्रेस के वजह से होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस के वजह से. दोज आर फिजिकल मैनिफेस्टेशंस. ब्लड रिपोर्ट में जब आप कराओगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन मार्कर ज़्यादा हो जाएंगे. तो CRP करके सब लोग ने कोविड में सुना है, CRP का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा.
CRP मतलब?
सी रिएक्टिव प्रोटीन, एक ब्लड टेस्ट है.
ओके.
तो अगर आप वो कराओगे तो उसकी लेवल बहुत बढ़ जाएगी.
वो मेरा बढ़ा हुआ है. ओके.
ठीक है, I'll tell you how to bring that out. तो वो अगर बड़ा हो मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस भाई बहन है. तो अगर वो अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गया तो CRP बढ़ जाती है. होमोसिस्टीन करके एक दूसरी इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, वो भी ब्लड टेस्ट में है. तो अगर वो बढ़ जाती है तो आपको पता है कि हार्ट में शायद इन्फ्लेमेशन हो रहा है क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से. तो ये सब हमको मालूम पड़ता है ब्लड रिपोर्ट की वजह से.
डू यू थिंक लिवर पे भी दिखता है स्ट्रेस?
नॉट सो मच डायरेक्टली.
लिवर होता है तो डू यू थिंक दैट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेस?
नो, नॉट रियली. फैटी लिवर इज बैड लाइफस्टाइल.
ओके.
या meaning the carbohydrate thing that I told you, that's fatty liver, bad eating habits. But this will show up. Aur fir clinical examination se malum padta hai, blood pressure thoda elevate ho sakta hai, pulse rate thoda elevate ho sakta hai. To you know ki physical marker ho gaya, blood test ho gaya, तो मालूम पड़ जाता है कि दिस इज नॉट,
और फिर बिहेवियर चेंजेस ये सब मिला
yes, के exactly. This is chronic stress that is not good for you. और ये आगे जाके प्रॉब्लम करने वाला है. तो सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अच्छा है, परसिस्टेंट एलिवेटेड स्ट्रेस को सीरियसली लेना चाहिए अगर ये सब हो तो. ट्राई ब्रीदिंग.
ओह यस,
ट्राई ब्रीदिंग. एनी टाइम यू आर वेरी एंग्शियस, स्ट्रेस ज्यादा हो, डिप्रेस्ड हो, जस्ट फोकस ब्रीदिंग पर. हमारे बॉडी में दो सिस्टम्स है, मैं कोशिश करूँगी सिंपल करने के लिए. सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपथेटिक. सिंपथेटिक SNS जो है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू से यू बीन अटैक्ड बाय अ वाइल्ड एनिमल, आप दौड़ रहे हो, योर स्ट्रेस लेवल इज वेरी वेरी हाई, यू हैव टू मीट अ डेडलाइन, यू आर इन स्टेट ऑफ सिंपथेटिक ओवरड्राइव. ये तभी ब्रीदिंग कैसे हो जाती है? यू नेवर फाइंड समवन सिटिंग लाइक दैट व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, यू नो ऐसे हो जाता है, राइट? दैट इज योर बॉडीज फिजिकल मैनिफेस्टेशन जब सिंपथेटिक ओवरड्राइव होती है. एंड द other one is parasympathetic, which is rest and digest. The first one is called fight and flight. This is rest and digest. So you're sitting aram se, main Raj ke saath baat kar rahi hu, he's a very good podcaster, I'm chilled out, I'm having my cup of coffee, koi stress nahi hai, I'm in a state of rest and digest. Anxiety ke time par ye nahi hota, when you are always anxious. In sympathetic. Now in our body we have a nerve called the vagus nerve, jo hamara sabse lamba nerve hai.
Okay,
usko activate karne se पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड यू कैन गो इन ओवर ड्राइव. और 5 मिनट लगता है ये वेगस नर्व को एक्टिवेट करना थ्रू ब्रीदिंग. तो ना जिम जाना है, ना कुछ करना है, एग्जाम देना हो, प्रेजेंटेशन, मेरे को टेट टॉक देना है, आई एम वेरी नर्वस, आई जस्ट टेक 5 मिनट्स ऑफ. जितना भी इनहेलेशन कर लो, एक्सहेलेशन उससे लंबा होना चाहिए, बस उतना ही. अब यू नो lot of people say 3 counts in, 6 counts out, बहुत लोग से नहीं होता. I just say your exhalation लंबा रखो inhalation से. ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है, आप किताब आपके हाथ में है, you're standing there, कहीं भी कर सकते हैं, wherever. If you do that, you activate your parasympathetic nervous system through your vagus nerve. It's the simplest. आप देखोगे 5 मिनट में आपका resting heart rate कम हो जाएगा, आपका BP कम हो जाएगा 5 मिनट में. This is documented. मैंने मेरे किताब में भी लिखा है कोविड के टाइम पर. You can also activate your vagus nerve with laughing with a friend. Vagus nerve activate हो जाता है. Take little warm water, gargle. Vagus nerve activate होता है. सवेरे सवेरे आप उठने पर just splash your face with cold water. Vagus nerve activate हो जाता है. You'll begin your day on a good note. Just go to a basin and just क्या करना है?
तो stress कम होता है vagus nerve active करने से.
Definitely.
और वो एक्टिव हो सकता है ये सारे तरीकों से.
बिल्कुल. सो आई थिंक व्हेन यू लव व्हाट यू डू देन इट डजंट सीम लाइक वर्क, सो स्ट्रेस डजंट रियली हैपन एट दैट पॉइंट, राइट? दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस फॉर यू. बट इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट यू रियली हेट, फिर प्रॉब्लम है. देन एवरी मिनट इज स्ट्रेसफुल, नो?
या लाइक वर्किंग आउट. Like I don't want to get up and work out. That's the most stressful thing I do in
life. Lot of shortcuts for everything that can still help.
Please tell me, what are the shortcuts that can help me
golden
work
nuggets
out? Okay, yes. Jinko workout karna nahi pasand hai, unke liye please aap kuch golden nuggets do.
On my trade secrets. Start slow. So जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, प्लीज डोंट गो टू द जिम एंड 60 मिनट्स के लिए वर्कआउट. हम लोग काफी डेथ्स देख रहे हैं 40-45 एंथुजियाज्म के वजह से. स्टार्ट स्लो. सो पहले मे बी 40-50 मिनट वॉकिंग कर लो अपने स्पीड पर. स्पीड ऐसा होना चाहिए कि अगर आप किससे फोन पर बात कर रहे हैं, यू शुड नॉट बी एबल टू फिनिश वन सेंटेंस.
यू शुड पैंट.
बट नॉट ओनली पैंट, कि सामने वाले को पता नहीं चल रहा है आपके क्या क्या कह रहे हो, सिर्फ पैंटिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है फिर. तो ऐसे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए. तो देन यू हैव टू जस्ट फिगर दैट आउट. तो स्टार्ट स्लो. ऑल्सो अगर आपको देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइन ऐसे है कि हार्ट हेल्थ के लिए यू ओनली नीड 150 मिनट्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज वीक में.
ओके.
तो आप मैथ कर लो, 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज कुछ नहीं हुआ. इट मीन्स 25 minutes a day or 40 minutes 3 times a week, 45 minutes 3 times. और उसमें भी जब आपने अब कर चुके हो और आपका हार्ट की कैपेसिटी अच्छी है तो यू कैन डू समथिंग कॉल्ड टबाटा. टबाटा इज हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज 8 मिनट्स के लिए हफ्ते में 3 बार.
8 मिनट एक्सरसाइज
हफ्ते में 3 बार हाई इंटेंसिटी. तो आपको ऐसे नहीं कि हम बैठे हैं आपको एक्सरसाइज पसंद नहीं है कल आप टबाटा कर लो और परसों मुझे फोन आ जाए कि प्रॉब्लम है. बट अगर आप आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ चुकी है, अगर आपको टाइम नहीं है, अगर आप 8 मिनट्स हफ्ते में 3 बार करते हैं तो आपको सेम बेनिफिट मिलता है कार्डियोवैस्कुलर. और किसके पास 8 मिनट्स नहीं हो? अगर आपके पास 8 मिनट्स नहीं हो अपने हेल्थ के लिए देन गॉड ब्लेस यू. बट यू नो सो 8 मिनट्स 3 times a वीक इज गुड. इवन वेट ट्रेनिंग जो बिल्कुल जरूरी है स्पेशली आफ्टर अ सर्टेन एज.
ओह यस,
वेट ट्रेनिंग इज वेरी गुड फॉर लॉन्जेविटी ना, जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ. 20 मिनट्स 3 times a वीक आप कर ले काफी है. तो आप हफ्ते में 3 बार टबाटा कर लो 8 मिनट के लिए, दूसरे दिन 20 मिनट कर लो, ठीक है. कोई जिम की जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाना का यू नो नो पर्सनल ट्रेनर कुछ नहीं.
आई एम ग्लैड लाइक यू आर ब्रिंगिंग सो मेनी पॉइंट्स एंड आई वांट गो डीपर एंड आई विल टेल यू अ पर्सनल लाइक अ पर्सनल रियलाइजेशन एंड थिंग दैट आई रेड रिसेंटली इज सो my mom, dad, everybody, I was like, they're not very health focused. And I was like, okay, let me try to do that and help them out and make them very health conscious about certain things. Right. And I started reading. So, uske se main bahut zyada ghus gaya usme ki, okay, kya help hoti hai, kaise hota hai, nahi hota hai. Right. I think one of the biggest myth, jo मेरे मॉम डैड को लगता है या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को लगता है कि एज के साथ ना फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम करनी चाहिए.
ओह बाय,
लाइक आई थिंक दैट्स द मोस्ट ड्रेडफुल थिंग आफ्टर ट्राइंग टू हेल्प माय पेरेंट्स फॉर लास्ट 2 years एंड स्पीकिंग टू मल्टीपल डॉक्टर्स एंड गोइंग थ्रू लाइक सो मेनी कंट्रीज एंड रीडिंग सो मेनी पेपर्स. जेन्युइनली आई कैन टेल यू एंड देन आफ्टर सीइंग आफ्टर दैट applying it in my parents' life and then seeing the difference right. The biggest myth is ki age ke sath tumhe exercise kam karni padti hai, strength training kam karni padti hai. It's ridiculous. I've seen this ki, and it's proven as well that if you strength train you age slower.
Of course.
और ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी आपकी सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, आपका मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है.
100%
ओवरऑल इतने सारे बेनिफिट्स हैं. लाइक आई वाज राइटिंग इनफैक्ट यस्टरडे एज वेल इस टॉपिक के ऊपर कि यू नो व्हेन यू डू फिजिकल एक्सरसाइज आपकी बॉडी के जो रिपेयर और मेंटेनेंस सिस्टम है वो फास्ट हो जाते हैं, उसकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है. तो आप इतनी जल्दी आप एज हो रहे हो उसको ब्लॉक करने में इतना ज्यादा हेल्प होता है. आपके जो डीएनए चेंज होते हैं उसकी वजह से आपको कितनी सारी चीजें होती है लाइक कैंसर एंड स्टफ, वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं.
यस,
इतने सारे बेनिफिट्स हैं व्हेन पीपल डोंट टॉक अबाउट इट. लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज सो इन माय फैमिली देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड देन आई फाउंड आउट दैट इफ अ वुमन इज एक्सरसाइजिंग फिजिकल एक्सरसाइज एंड दिस हैज बीन प्रूवन इन 7 different countries राइट कि अगर इफ अ वुमेन इज एक्सरसाइजिंग मोर देन 4 times a week हर चांसेस ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर रिड्यूसेस बाय 30-50%.
यस,
नोबडी टॉक्स अबाउट इट.
आई टॉक अबाउट इट टू ऑल माय कैंसर पेशेंट्स.
यू डू राइट?
ऑल माय कैंसर पेशेंट्स.
लाइक आई हैव बीन टू 20-30 डिफरेंट डॉक्टर्स विद माय मॉम एंड नन ऑफ देम हैव एवर टॉक्ड अबाउट इट. दे ऑल से दैट हे ये ट्रीट कर लो, ये 4 reports से कूल अभी आपको नहीं है. Great, but what can she do so that she she should not ever get it as well?
100%.
Nobody has ever talked about it.
I'll tell you. Especially women jo overweight hain, post breast cancer surgery, post breast cancer chemotherapy ho gaya, radiation ho gaya, agar ho gaya, whatever. Breast cancer is mostly an estrogen tumor. Estrogen hormone dominance hai. Aapke jo fat cells hain, usme estrogen hai. तो अगर आप ज्यादा मोटापा ज्यादा है तो ईस्ट्रोजन ज्यादा होने वाला है, विच मीन्स चांसेस ऑफ रिकरेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर मोर. तो आफ्टर योर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी आई मेक ऑल माय पेशेंट्स मेक श्योर आप वॉकिंग कर लो, जिम जाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन बोन स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक होना चाहिए बिकॉज ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज हियर ऑल्सो इन द मसल. एंड आपका फैट सेल्स जितना कम हो, विसरल फैट जो ऑर्गन के बाहर हो, विच इज योर डेंजरस फैट, वी हैव टू ब्रिंग डाउन ड्रास्टिकली. सब कैंसर पेशेंट हमारे प्रोटोकॉल में इट्स वन ऑफ द फोर थिंग्स फाइव थिंग्स दैट यू हैव टू डू, एब्सोल्यूटली नॉट निगोशियबल. बट वी वॉन्ट ईस्ट्रोजन टू बी एट इट्स मिनिमम, विच मीन्स एक्सरसाइज करना बिल्कुल जरूरी है.
Yeah.
सब कैंसर पेशेंट्स को, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर.
ऐसे कौन से सुपर फूड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं ज्यादा अच्छा, हेल्दी और लंबा जीने के लिए?
कोई फूड नहीं हेल्प करता, नो स्पेसिफिक फूड. दिस इज ओनली टू मेक मनी, मार्केटिंग गिमिक है. आप यू कैन नॉट आउट सप्लीमेंट अ बैड डाइट, यू कांट आउट एक्सरसाइज अ बैड डाइट. अब पूरी आपका लाइफस्टाइल ठीक हो एंड योर ईटिंग, बाकी का खाना आपका बिल्कुल ठीक हो रहा हो, देन आपको कोई ऐड करने हैं, आपको ये फूड ऐड करना है, आपको वो ड्रिंक ऐड करना है, देन यू विल बेनिफिट, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन आप सीरियल खाओगे नाश्ते में एंड योर ईटिंग जंक फूड एंड योर ईटिंग चिप्स एंड चॉकलेट, और फिर आपने बुलेट प्रूफ कॉफी ले लिया या टर्मरिक लाटे लिए ले लिया, कुछ नहीं होने वाला. बुलशिट, बुलशिट.
डॉक्टर विशाखा, प्लीज डोंट डिसअपॉइंट, डोंट किल हर. हमारे रील्स और ट्रेंड जो हम देखते हैं हमें वो प्री कंसीव्ड बिलीव्स हमारे के लिए, मत करो ऐसे, मत करो.
मेरे सुपर फूड्स यू नो फेवरेट हैं, बट दैट्स बिकॉज मोर ऑर लेस आई एम लिविंग अ हेल्थी लाइफ स्टाइल, तो फिर एडिशन करने में बेनिफिट है.
क्या होता है एडिशंस में, बताओ दो.
ब्लैक कॉफी.
ओके, ब्लैक कॉफी इज गुड,
वेरी गुड, वेरी गुड फॉर पीपल इफ यू नॉट ड्रिंकिंग 8 PM एट नाइट, 6 कप्स अ डे, इफ यू ड्रिंकिंग फर्स्ट हाफ इन द मॉर्निंग, फैटी लिवर, इफ फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है.
क्या बात कर रहे हो.
यू नो मैंने रील कर दिया था इंस्टाग्राम पर फैटी लिवर पर, 50 लाख पीपल हैव सीन इट ऑन दिस थिंग, और मैंने कहा था ब्लैक कॉफी बहुत अच्छी बात है, डॉक्यूमेंटेड. Whatever I say is scientifically documented.
Okay, tell me 5-6 things जो हर किसी इंसान को लेनी चाहिए, which is good for their health in daily life.
Health or fatty liver or health?
Health overall. Fatty liver इसके बाद बात करते हैं.
Sugar नहीं के बराबर ले लो. Most important thing, most detrimental. Lifespan span कम कर लेगी आपका. More than lifespan, health span कम कर लेगी. Processed food, जो भी tin, can, bottle से आता है. कैन में फेंक दो, दैट इज योर सेकेंड थिंग. डोंट फियर योर फैट, जस्ट राइट ओमेगा 3 फैट्स इंक्लूड कर लो. ये यू नो इतने लोग कहते हैं
3 फैट, दो तीन चीजें बताओ जिसमें होते हैं.
नॉन वेजिटेरियन के लिए फैटी फिश, सामन, मैकरल, ट्यूना, सार्डीन्स, वेरी गुड.
वेजिटेरियन के लिए
वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3. सो आप ओमेगा 3 इंक्लूड कर लो, लेकिन फैट्स डेफिनेटली इंक्लूड कर लो. नट्स हैं, सीड्स हैं, डोंट फियर योर फैट्स. बहुत लोग कहते हैं कि फैट्स आपको हार्ट डिजीज दे देंगे, फैट्स आपको, ये बिल्कुल गलत बात है. मेक फैट्स योर फ्रेंड. इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है फैट्स, सो यू नीड फैट्स. प्रोटीन इंक्लूड करो, बट बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं इंक्लूड करना, एडिक्वेट प्रोटीन. लॉट ऑफ पीपल से मैं जिम जा रहा हूँ, आई वॉन्ट यू नो 4 scoops, 5 scoops ऑफ प्रोटीन, ये गलत बात है. So you have to have adequate protein, adequate fat, adequate complex carbohydrate, fruit and vegetable. Remove your simple sugars, junk food nikal do. Exercise kar lo. Sleep par extra dhyan rakho taki quality of sleep bahut achhi ho. Breathing jaise humne baat ki hai, breathing se stress bahut kam ho jati hai. Wo kar lo. And then supplements, blood work ke depending
par. But aise koi food nahi hai ki avocado, broccoli, इन सब खाने से कुछ होता है,
स्पिनच खाने से कुछ होता
है. What is a great? Give me like list of 5-6 foods जो बहुत अच्छे होते हैं.
Mushrooms,
अच्छे होते हैं.
Very good.
Okay.
Fantastic. Mushrooms very good for brain health, for gut health, immunity के लिए. Mushrooms are great. One of my favorites. Black coffee जिस मैंने कह लिया, very very good. Antioxidants है उसमें, helps you you know go to the bathroom so you detoxify well. Fatty liver ke liye acche hain. Omega 3 is my favorite. Well, all green leafy vegetables, isme magnesium bahut zyada hai, so you can use those. Avocado is great kyunki usme fat bahut acha hai, good fat hai, so you can have that jo hormones balance karte hain. And I think nuts and seeds is something sab log ko include karna chahiye. Thode se aise nahi ki aap itne kha lo, lekin 10 nuts a day सबको include करना चाहिए. Brain health के लिए बहुत अच्छा है, anti-inflammatory है. Fruit हो, vegetable हो, superfood हो, आपको देखना चाहिए कि ये आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाला है या कम करने वाला है, आपका शुगर बढ़ाने वाला है या कम करने वाला है। अगर आपका इन्फ्लेमेशन कम हो और शुगर कम हो, वो आपके लिए सुपर फूड है, एंड ऑफ स्टोरी। मैं हमेशा कहती हूँ 80-20 रूल फॉलो करना चाहिए। आप 80% आपने क्लीन खाना खा लिया, क्लीन लाइफस्टाइल रह लिया, व्हाई शुड यू नॉट इंडल्ज 20%? आपको पिज्जा खाना हो, बर्गर खाना हो, जो भी खाना हो खा लो। आपको फ्रूट जूस पीना हो पी लो। तो ठीक है, बिकॉज योर बॉडी विल स्टिल वर्क ऑन दैट 80%। तो नेट नेट आपका हेल्थ फिर भी बहुत अच्छा रहेगा।
हम लोग बात करते हैं फैटी लिवर की। जिसको फैटी लिवर हो उसको क्या करना चाहिए, पता कैसे चलता है? ब्लड टेस्ट के थ्रू फैटी लिवर। उसके अलावा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कभी कि मेरा फैटी लिवर है, मेरे एनुअल ब्लड टेस्ट में आ गया और उसमें आ गया, मुझे पता चला कि मेरा बहुत माइनर सा 2 पॉइंट ऊपर है उससे, और देयर इज अ स्लाइट साइन ऑफ फैटी लिवर, राइट? और मैं अल्कोहल भी नहीं पीता, उसके बाद मेरा फैटी लिवर है। सो आई गॉट लिटिल सरप्राइज, और फिर मुझे पता चला कि लाइफ स्टाइल की वजह से हुआ है कि मैं खा के सो जाता हूँ, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और मैं बहुत गलत टाइम पे खाता हूँ, और मैं सोता बहुत कम हूँ, तो जब मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे सोता हूँ, एंड उसके पहले मैं जस्ट खा देता हूँ, रात को 12-1 बजे खा लिया और मैं सो गया, और फिर सुबह 5 बजे वापस उठ गया। सो मेरी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा लेस स्लीप, लेट ईटिंग, एंड फिर जो वो खाता था वो भी जंक खाता था, कि मैं आधी रात को पूरा फ्राइड फूड खा रहा हूँ या शुगर खा रहा हूँ प्रॉपरली।
रेसिपी फॉर डिजास्टर,
रेसिपी। आई हैव लर्न दिस, बट ये 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने से
ठीक चल रहा है।
तो बिल्कुल रात को 10 o'clock के बाद नो ईटिंग, अगर मैं सुबह तक भी जगा हुआ हूँ तो नॉट ईटिंग अ थिंग।
वेरी गुड,
इट्स डन। इट्स सिंस देन 2 महीने में मैंने 1 बार एक डिजर्ट खाई है, 2 महीने में मैंने फ्राइड फूड नहीं खाया है। सो आई एम गेटिंग देयर,
वेरी
गुड। इन 6 months यू विल सी एप्स। बट हाँ, कमिंग बैक टू पॉइंट, कि लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनको फैटी लिवर है। अब जिनको है पता चल गया है, पहले तो ब्लड टेस्ट के अलावा कोई साइंस होते हैं जिससे पता चलता है फैटी लिवर है? कोई सिम्टम्स होते हैं?
नहीं, सैडली सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। नहीं कि
लिवर की, लिवर खराब होने का कोई सिम्टम ही नहीं होता।
नहीं नहीं, लिवर खराब दूसरे डिजीजेस में बहुत सिम्टम्स होते हैं, फैटी लिवर
में नहीं होता
मोस्टली। तो पहले तो जो भी इंसान का मोटापा ज्यादातर एब्डोमेन पर है, 9 out of 10 ऑफ देम हैव फैटी लिवर। तो उनको स्कैन करना जरूरी है, ब्लड टेस्ट से पता लगता है कि लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड है कि नहीं, लेकिन उनको फिर स्कैन भी करना है। सोनोग्राफी पहले करते हैं जिससे उनको मालूम पड़ता है कि उनका ग्रेड क्या है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3।
ग्रेड 1
रिवर्स हो जाता है आराम से, ग्रेड 2 भी रिवर्स होता है आराम से, ग्रेड 3 में कभी कभी हमको मेडिसिन भी देने पड़ते हैं लाइफ स्टाइल के अलावा। ग्रेड 3 के अलावा फिर सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, और उसके बाद ट्रांसप्लांट। These are the stages of fatty.
और liver transplant के chances बहुत कम होते हैं, right?
And बहुत मुश्किल है, बहुत time लगता है, you need organ transplant है वो, बहुत 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 मुश्किल है, किसको वहाँ पहुँचना नहीं चाहिए, not because of lifestyle.
तो कैसे reverse किया जा सकता है fatty liver?
Fatty liver में अगर किसी को भी एक चीज लाना हो, stop processed food. बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड ही जाके फ्रुक्टोस जाके फैटी लिवर करता है, कन्वर्ट होता है। बहुत लोगों को लगता है कि फैटी लिवर क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये बिल्कुल गलत बात है। इट्स नॉट प्रोग्रेसिव, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं लाइफस्टाइल से। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि फैटी लिवर अल्कोहल की वजह से है, जैसे अभी आपने कहा यू डोंट ड्रिंक अल्कोहल, ये गलत बात है। तो यू कैन गेट व्हाट्स कॉल्ड नैश, इट्स नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज, जिसमें अल्कोहल नहीं पीने से भी हो सकता है। एंड इफ यू टेक अ रिकॉल, ये लोगों में टिपिकली इनका खाना इज फुल ऑफ प्रोसेस्ड जंक फूड, लिक्विड शुगर्स, बिगिन डेविड फ्रूट जूस, हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। लेकिन सो दैट इज द, सो यू हैव टू एलिमिनेट दैट। फैटी लिवर में ऑल्सो यू टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो एनसेड ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं और पैरासिटामोल्स हैं, ये नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत डैमेज कर सकते हैं लिवर को। तो बहुत लोगों को लगता है कि वो थोड़े घुटने में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, पैरासिटामोल तो ही है, सेफ ड्रग है, हर रोज़ लेते हैं, और समटाइम्स वी सी उनको फैटी लिवर है, तो यू हैव टू स्टॉप दैट।
अपार्ट फ्रॉम लिवर, आपने बोला कि आप डिसीज रिवर्सल पे काम करते हो, डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है?
टाइप टू यस, टाइप वन नहीं, बट टाइप टू ज्यादातर रिवर्स कर सकते हैं इन मोस्ट केसेस.
क्या डिफरेंस होता है टाइप वन और टाइप टू में?
टाइप वन हैपेंस सिंस चाइल्डहुड, एंड जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, जिसको पूरी जिंदगी इंसुलिन लेना पड़ता है. सो वी कांट डू एनीथिंग ताकि इंसुलिन बढ़ जाए, दैट योर पैनक्रियास इज जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग. तो इंसुलिन टाइप वन में हम रिवर्स नहीं कर सकते.
जो इंजेक्शन लेते हैं वो टाइप वन है, जो दवाइयाँ खाते हैं वो टाइप टू है.
वेल, दवाइयाँ टाइप टू में इंसुलिन भी बहुत लोग लेते हैं क्योंकि इट्स सो फार गॉन, क्योंकि इनका डाइट इतना खराब है कि उनको इंसुलिन लेना पड़ रहा है अभी. दैट कैन बी रिवर्स,
चेंज होता है
100%. कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम कर लो, यू रिड्यूस द सिंपल शुगर्स बट यू गिव देम कार्बोहाइड्रेट्स बट कॉम्प्लेक्स वाले. एंड वो सीक्वेंसिंग फूड का अलग होना चाहिए. तो अगर आप रोटी या राइस खा रहे हो, यू मेक श्योर यू बिगनिंग विथ फाइबर, पहले बड़ा बोल या तो सैलड का या तो सब्जी का पहले, ताकि इंसुलिन और शुगर का स्पाइक नहीं हो, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में वो फाइबर है तो वो अलाउ नहीं करता है वो शुगर स्पाइक होने के लिए. तो उसके बाद आप कार्ब प्रोटीन फैट ले लो. सो बाय चांस आपको डिजर्ट लेना हो, आप बाहर गए एंड यू रियली लाइक दिस डिजर्ट, आई ऑलवेज से हैव द डिजर्ट, मेक अ स्वैप, डोंट हैव दैट डे, डोंट हैव रोटी या राइस, प्रोटीन खा लो, सब्जी खा लो, जो भी खाना है, उसके बाद आप डिजर्ट खा लो इन प्लेस ऑफ योर रोटी राइस. ठीक है, दीज आर स्मॉल स्वैप्स जो आप कर सकते हैं.
टेलिंग मी एक बोल बड़ा मैं राइस खाऊं, उसकी जगह मैं छोटा बोल डिजर्ट खा सकता हूँ?
हर रोज नहीं, बट या इफ यू हैव टू डू इट, इवन हफ्ते में एक दो बार कर सकते हैं, कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग द रेस्ट ऑफ इट राइट. या आप खाने के बाद आप 10 मिनट वॉक कर लो, अगर आप कार्डियक पेशेंट नहीं हो तो आप 10 मिनट अगर वॉक कर लो, वो शुगर घटाता है. तो ऐसे बहुत से हैक्स हैं जो कर सकते हैं. आप नट्स एंड सीड्स डाल दो. और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट में हमको सिर्फ ये तीन मैक्रोज है, ये तीनों में से नथिंग बैलेंसेज हॉर्मोन्स एज वेल एज फैट्स डू. ब्लड शुगर एंड इंसुलिन इज ओनली अ हॉर्मोन. तो अगर आपको हॉर्मोन बैलेंस करना हो, आप फैट यूज कर लो. अगर आपने एक ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स, सब फैट, हेल्दी फैट्स. तो अगर आप सैलड खा रहे हो और उसमें एक ऑलिव ऑयल डाल दिया, आपके शुगर का स्पाइक बहुत कम हो जाएगा. और ये कितने आसान चीज है करने के लिए.
डू यू थिंक ग्रीन स्मूदी पी सकते हैं? इज इट गुड और बैड?
ग्रीन स्मूदी में क्या होगा, आप फ्रूट डालोगे?
हाँ, एवोकाडोस डालूंगा, स्पिनच डालूंगा, उसके बाद एक फ्रूट डाल दूंगा ताकि टेस्ट अच्छा करे.
तो अगर आप फ्रूट ना डालें तो ठीक है, एवोकाडो इज एक्चुअली अ फ्रूट, तो आप एवोकाडो डाल सकते हो. लेकिन
बट फिर कुछ तो टेस्ट के लिए भी चाहिए.
आमंड मिल्क डाल के अगर आप कोको पाउडर डाल दो, अनस्वीटन कोको पाउडर, सिनेमन पाउडर डाल दो, सिनेमन इज ग्रेट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस आल्सो, मीठा टेस्ट भी आ जाता है.
बहुत गंदा टेस्ट होता है दालचीनी का.
आई लव द टेस्ट ऑफ दालचीनी, बट दिस इज नाउ, आई मीन,
हां, दिस सब्जेक्टिव.
यस,
नो, बट आई गेट इट. पर जो इतना था इंटरनेट पे, व्हाट वेयर माय क्वेश्चन वाज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, राइट, कि इंटरनेट पे इतने ज्यादा ग्रीन स्मूदीज दिखाता है, 10 हेल्दी स्मूदीज, 3 हेल्दी स्मूदीज, सब में एक बेस फ्रूट होता है जिसके अंदर टेस्ट अच्छा लगता है. एंड मैंने बहुत पिया क्योंकि मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम खाता था पहले, तो आई वांटेड टू कॉम्पनसेट इन माय लाइफ. तो मैं केल डाल दूंगा, स्पिनच डाल दूंगा, ब्रोकलीज भी डाल दूंगा, कुछ भी डाल दूंगा, सब ऑल हेल्दी वेजिटेबल्स. एंड उनके साथ मैं मैंगो डाल दूंगा. सो आई जस्ट मेक इट, सो मुझे टेस्ट मैंगो की वजह से बाकी सब ग्रीन्स का सिंपली मेरी बॉडी में चल जाता है. डू यू थिंक दिस इज गुड थिंग टू डू और बैड थिंग टू डू?
सो इट इज अ गुड थिंग टू डू इफ यू आर समबडी हु इज नॉट ईटिंग वेजिटेबल्स, जैसे अभी आपने कहा, और अगर आपको डायबिटीज नहीं हो तो इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू, यू एंड आई कैन डू इट. लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो, शुड यू डू इट? नहीं. अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या अगर आपको मोटापा कम करना हो, शुड यू डू इट? देन द आंसर इज नो. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेटाबॉलिकली हेल्थी यू आर, because these are all metabolic parameters. So, us hisab se you can decide what is good for you and not good for you.
Can log kya ghar mein apne khud metabolic rate nikal sakte hain apna khud ka?
Metabolic rate aur metabolic healthy hona bilkul alag baat hai.
Okay, kya hota hai dono alag alag?
To panch cheez hai metabolic health mein. Aapke triglyceride level 150 ke niche hone chahiye. Aapke blood sugar level 110 ke niche hone chahiye fasting. Aapka waist जो है 40 इंचेस के कम होना चाहिए इफ यू आर अ मैन, एंड 35 इंचेस के कम होना चाहिए इफ यू आर अ वुमन. सिमिलरली योर वेस्ट एंड हिप रेशियो इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग. और आपका इंसुलिन लेवल जो है 8 से कम होना चाहिए, फास्टिंग इंसुलिन, और आपका बीपी 120/80 से कम होना चाहिए. ऑल दिस विदाउट मेडिकेशन. तो अगर पांच में से आपके ये तीन पॉजिटिव में आ गए, यू आर व्हाट वी कॉल मेटाबॉलिकली ब्रोकन और मेटाबॉलिकली अनहेल्थी. और इसका मतलब ये है कि आपके चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी ह्यूजली इंक्रीज. लेकिन ये सब को आप रिवर्स कर सकते हो लाइफस्टाइल, एंड दैट इज व्हाट द फोकस शुड बी.
Is it proven कि ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी में प्रॉब्लम्स होती
है? I'll tell you something bigger than kidney. Be ready to be surprised by what I'm telling you. Have you heard of something called mTOR?
क्या होता है? mTOR. क्या होता है?
Mechanistic target of rapamycin. Technical नाम है. ये प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है. अगर अभी mTOR का काम क्या है? मसल बिल्ड करना. Now, if you're a young boy or if you're trying to just build your six-pack gym mein, agar a pregnant woman ho, you're eating for two. mTOR, you want elevated kyunki mTOR beneficial hai. Second half of life, jo hum post-reproductive life kehte hain, jahan puri family ho gayi, you still want to be healthy and protein ka bahut mahatva hai, don't get me wrong. Lekin second half mein, agar mTOR bahut elevated raha, or constantly elevated laha, then it can cause cell proliferation and cancers and can also reduce your lifespan. Or protein signaling molecule kisse hota hai? Extra protein se. This is now proven. So extra protein can elevate your mTOR and cause cancers and reduce your lifespan. So does that mean then you should not eat protein? Does that mean you should eat less protein? Absolutely not. Protein is must for you. So it's important therefore to go to your doctor to see aapke liye protein kitna hona chahiye.
Do you think ek acha phenomena hai jo mujhe pata chala tha in foreign countries bahut hota hai that ki wahan par na log health history check karte hain before marrying. India mein nahi karte hain, aapko lagta hai karna chahiye?
Actually India mein affluent society mein kafi karte hain.
Karte hain?
Haan. Aur health karna chahiye. Of course, करना चाहिए. वैसे दो थैलेसीमिक माइनर लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, या अगर हो गई तो एटलीस्ट देखना चाहिए कि चाइल्ड को स्क्रीनिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि थैलेसीमिया यू नो मेजर हो सकता है, या जो कंसेंग्विस मैरिज है, जो फैमिलीज में यू नो रिलेटिव्स शादी कर लेते हैं, तो चाइल्ड को डाउन सिंड्रोम या दूसरी चीज़ हो सकती है. सो यू इट्स इम्पोर्टेंट टू टेस्ट.
डू यू थिंक सेम कम्युनिटी में सेम रिलेटिव में शादी करना इज नॉट अ ग्रेट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ हेल्दी चाइल्ड?
वेल कैन हैपन. जैसे हम पारसियों में देखते हैं, इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी, सो दे इंसिस्ट दैट यू नो जितना हो सके टू प्रोक्रिएट. लेकिन देखा है कि उन्होंने में G6PD करके बहुत ज़्यादा है पारसीज में.
G6PD क्या होता है?
इट्स एन एंजाइम इन द बॉडी, इट्स अ डिफिशेंसी. तो अगर माँ बाप को दोनों G6PD है तो चाइल्ड को जाके अगर आगे प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऐसे बहुत चीज़ें बहुत चीज़ें हैं. तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्क्रीन.
हेल्थ होना चाहिए ऐसे. अब एफ्लुएंट सोसाइटीज में हो रहा है, बाहर नहीं होता.
यू नो एक्चुअली मेरा ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ दैट एक्स्ट्रा वन मील अ मंथ आउट, और अगर आप साल में एक बार या दो बार अपने हेल्थ पर ध्यान रखें एंड यू स्पेंड लिटिल मनी, यू विल सेव योर सेल्फ लैक्स गोइंग फॉरवर्ड.
Okay, quick question and then I'll go to the last segment. हम लोग sugar craving की बात कर रहे थे, तो usually जब women periods आने वाले होते हैं उनके या periods पे होती है, तब उनको उस time में बहुत ज़्यादा sugar craving होती है, right? या जो men और women both जब सोते नहीं है ज़्यादा, कम सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो उनको उस टाइम पे शुगर क्रेविंग बहुत होती है. और देर आर डिफरेंट मूड्स, कभी मूड बहुत बेकार होता है या मूड फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज़्यादा बिहेवियर चेंज होता है, तो बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग होती है. तो शुगर क्रेविंग को कैसे रोका जाए?
पहले तो वुमेन को प्री पीरियड, मोस्ट वुमेन को तब, यू एब्सोल्युटली राइट, तभी होती है. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पीरियड के 4-5 दिन, अगर फिर पीरियड इज रेगुलर, तो 4-5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, यू डू व्हाट इट टेक्स तभी से, ताकि यू नो आपका डिवोर्स नहीं हो जाए यार, बिकॉज आई गेट हाउ स्पाउसेस कमिंग एंड टेलिंग मी क्या हो रहा है, इसको संभालो. लेकिन सी, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स हफ्ते पीरियड के थोड़े दिन पहले ऊपर होना शुरू करते हैं. एंड बहुत से लोग चेंजेस नहीं लाते लाइफस्टाइल में, एक्सरसाइज में, खाने के पैटर्न में, तभी यू शुड लिसन टू योर बॉडी एंड नो कि क्या कब करना चाहिए. लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो और पीरियड के एक हफ्ते पहले आप बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, तो आपको शुगर क्रेविंग ज़्यादा होनी ही है. इट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज एट दैट टाइम एक्चुअली बॉडी का ऐसा हार्मोन चेंज हो जाता है कि इट्स ओके इफ़ यू डोंट वर्कआउट टू मच और आप थोड़ा एक्स्ट्रा शुगर खा लें, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है दैट टाइम. उसके बाद पीरियड के एक हफ्ते बाद या एंड में अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना है, एक्स्ट्रा इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, शुगर का बिल्कुल परहेज करना है, दैट इज द राइट टाइम. आसानी से हो जाता है, देन इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ विल पावर. लेकिन आप पीरियड के टाइम पर और प्री पीरियड के टाइम पर करने लगोगे, 100% रेसिपी फॉर फेलियर एंड डिजास्टर. इससे अच्छा यू यूज दैट टाइम से आई एम गोइंग टू रेस्ट लिटिल बिट, मैं नेटफ्लिक्स देखने वाली हूँ, थोड़ा चॉकलेट भी खाने वाली हूँ. लेकिन आप बैलेंस कैसे करोगे? आप सवेरे का नाश्ते में कभी नहीं शुगर लोगे, विच इज़ द ईजिएस्ट थिंग फॉर एवरी वुमन टू डू. आप एग्स ले लो सवेरे योग के साथ, येलो के साथ, क्योंकि वो हॉर्मोन्स बैलेंस करता है एग का येलो, क्योंकि उसमें फैट है और फैट हॉर्मोन्स को बैलेंस कर लेगा. आई कैन टेल यू आउट ऑफ 10 वुमेन आई हैव ट्राइड द स्ट्रैटेजी ऑन सो मेनी वुमेन. अगर आप सिर्फ एक चीज़ वो चेंज कर ले कि उनका नाश्ता में एग्स कर लो योक्स के साथ ताकि वो फैट आ जाए, वो कहते हैं हमारे शुगर क्रेविंग तो 50% नीचे चला गया. आपने किया क्या? दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दी, जस्ट बिकॉज यू हैव इंट्रोड्यूस्ड फैट. और जो वेजिटेरियन है जिससे नहीं, यू थिंक हैव बुलेट प्रूफ कॉफी इन द मॉर्निंग, इसमें आप कोकोनट डाल दो. कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी, और उसमें आप फैट डालते हैं. तो आप या तो कोकोनट ऑयल डाल दो या तो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ऑयल भी आता है, या तो घी डाल सकते हैं, तो उसमें डाल दो. और ये आपको फीलिंग ऑफ सटाइटी देता है, तो वो बहुत ज़रूरी है प्री पीरियड. क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट सवेरे लोगे, फ्रूट खाओगे, फ्रूट जूस लोगे, कॉर्नफ्लेक्स लोगे, जो भी, तो आपका शुगर क्रैश होगा और फिर आपको ज्यादा क्रेविंग होगी शुगर की.
लिस्ट वर्स्ट टू बेस्ट टू वर्स्ट डिजर्ट्स बेस्ड ऑन कि अगर देखो पहले शुगर और डिजर्ट खाना गलत है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कभी कभी खाना चाहिए, अग्री, बट अगर खाना भी चाहिए तो लिस्ट द बेस्ट वन एंड देन द वर्स्ट वन. तो सबसे बेकार डिजर्ट को दी, लिस्ट द वर्स्ट वन एंड द बेस्ट वन. So worst 5, 4, 3, 2, 1 पे जाते हैं. चलो
जिसमें सिर्फ शुगर हो और
जैसे
कुछ नहीं.
नंबर 5 पे क्या होगा सबसे बेकार रखना होता है? अभी जितने नाम सोच सकते हो उनमें से बताओ.
दिस माइट सरप्राइज पीपल एक्चुअली. सॉर्बे, फ्रूट सॉर्बे.
ओके,
तो यू नो जिसमें सिर्फ आइस, शुगर और फ्रूट जूस है,
वो सबसे बेकार है.
सबसे बेकार है. क्या होता है उससे? सिर्फ शुगर स्पाइक. हर चीज जो आप, हर निवाला जब आप लो, आप सिर्फ सोचो ये मेरे ब्लड शुगर और इंसुलिन पर क्या असर करेगा.
ओके, तो सबसे बेकार फ्रूट सॉर्बे फोर नंबर पे.
द वर्स्ट, प्रोबब्ली मच वर्स देन सॉर्बे इज जलेबी.
ओके, सो जलेबी इज नंबर 5 वर्स्ट डिजर्ट.
यस,
नंबर 4 इज फ्रूट सॉर्बे.
हां,
नंबर 3
मोतीचूर लड्डू.
नंबर 2
एनी ऑफ योर बंगाली स्वीट्स, मच मच बेटर.
ओके,
और नंबर 5 मैं एक नंबर 1 मैं एक वेस्टर्न डिजर्ट दे दूंगी, कैरमल कस्टर्ड या क्रेम ब्रुले, जिसमें एग्स है बहुत, तो प्रोटीन की मात्रा बहुत है.
तो वेजिटेरियन जो है उसके लिए रसमलाई.
रसमलाई जिसमें छेना है. एंड इवन बेटर इज बंगाली स्वीट्स विद जैगरी इन इट. तो संदेश जो विंटर मंथ में मिलते हैं.
ओके,
बेस्ट.
गॉट इट. सो वाओ, वर्स्ट डिजर्ट्स टू गुड डिजर्ट्स, आई लाइक दिस.
ओके, वर्स्ट इज डेफिनेटली जलेबी. डेफिनेटली इट्स जस्ट फ्राइड शुगर सिरप.
विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत लोगों में,
बहुत, डिस्पाइट बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री.
एग्जैक्टली. वाओ, दैट्स, I never thought about it, by the way.
Yeah. We are supposed to have maximum sunlight.
Sunlight. And we have the most ridiculous amount of sunlight.
But I'm, agar main 10 patients
because we are a tropical country, that's why our sunlight ki zyada hai, kyunki hamara sun bahut harsh hai.
Nahin, hamara layer bahut.
Nahin, because hum log tropical country mein, yahan pe garmi already bahut zyada hoti hai. To isliye humne thoda devil bana diya sun ko.
Nahin, yahan sabko फेयर होना है, इसलिए सनस्क्रीन की मात्रा बहुत, सेल्स सनस्क्रीन की सेल्स बहुत हो रही है, दैट्स व्हाई, नॉट बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग।
कोल्डर रीजन में काफी एक लाइक एक रिचुअल होता है कि सुबह सुबह लोग वॉक पे जाते हैं सन में, बिकॉज सन बहुत कम होता है तो वैल्यू बहुत ज्यादा करते हैं। हम लोग हैं सन 24/7 होता है, हम वैल्यू नहीं करते, हमने डेविल बना दिया उसे कि दूर रहो,
बिकॉज यू डोंट वांट पिगमेंटेशन। ऑल्सो जिसको मेलेटोनिन ज्यादा हो स्किन में, जैसे हमारे वे नॉट फेयर राइट, जो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, सो वी नीड मोर सनलाइट। विटामिन डी,
तो कैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसे खत्म करें लोग? सनलाइट इज द बेस्ट
सन
मिल नहीं पाता है, सुबह सुबह भागते हैं लोग।
सी फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट यू मोस्टली नीड ओनली फॉर 20 मिनट्स, तो अगर आप बाहर नहीं जा पाओ ऑफिस के टाइम पर या लंच के टाइम पर, तो ओपन योर विंडो और वहां से काम कर लो, या जब आप ड्राइविंग कर रहे हो वर्क के लिए पुट द विंडो डाउन। आजकल सबका ड्राइविंग टाइम तो काफी है,
पर ड्राइविंग के टाइम पे इतना पोल्यूशन और इतनी गाड़ियां और इतनी चीजें कैसे कर सकते हो?
सही बात है, देन सिट नेक्स्ट टू अ विंडो और लंच के बाद 10-15 मिनट नीचे जाओ। आई टेल यू अनदर ट्रिक, आप अपना जब आप थोड़े टाइम के लिए भी नीचे जाते हो तो आप अपना शेडो देखो, अगर आपका शेडो आपके हाइट से कम है दैट मीन्स यू अब्सॉर्बिंग द विटामिन डी, और अगर आपका शेडो ज्यादा है दैट मींस यू आर नॉट अब्सॉर्बिंग योर यूवीबी।
अपार्ट फ्रॉम सन कैसे विटामिन डी बढ़ा सकते हैं?
सप्लीमेंट्स ले लो, और कुछ तो है नहीं।
और क्या होता है कि अगर विटामिन डी बेकार है लोगों का? तो
विटामिन डी एक्चुअली हम उसको विटामिन बुलाते हैं, बट इट्स योर मास्टर हार्मोन इन द बॉडी, इट टेक्स केयर ऑफ 200 प्रोसेसेस बॉडी में, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी। एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी कुछ भी, आई मीन विटामिन डी इज एसेंशियल, बोन हेल्थ के लिए एसेंशियल है, हार्मोनल बैलेंस के लिए एसेंशियल है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है, मतलब सब कुछ के लिए एसेंशियल है, पीसीओएस में काम करता है, फॉर एवरीथिंग। सो यू हैव टू मेक श्योर कि, और यू नो जो हम जो ब्लड रिपोर्ट करते हैं 30-100 रेंज नॉर्मल है, मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ दैट इज नॉर्मल रेंज, हम लोग को नॉर्मल नहीं चाहिए, हमको ऑप्टिमम चाहिए। तो अगर आपका 30 है वैल्यू, प्लीज डोंट बी हैप्पी अबाउट इट, मुझे आपका वैल्यू 60 या 70 चाहिए, मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल ऑप्टिमम चाहिए ताकि योर बॉडी वर्क्स ऑप्टिमली, तो वो आपको देखना चाहिए। मोस्ट पीपल आर वेरी हैप्पी सब रेंज में, आयन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, B12 हो गया, नहीं मेरा ऐसे नहीं नॉर्मल इज नॉट ऑप्टिमम, सो वो देखना जरूरी है। एंड देन उस हिसाब से यू शुड टेक कैप्सूल्स और विटामिंस, मतलब योर टैबलेट्स ऑफ योर विटामिन डी, वो देख के। बट विटामिन डी आप ब्लाइंड नहीं ले सकते, उसके लिए यू मस्ट डू योर ब्लड टेस्ट।
आई थिंक एवरीथिंग दैट यू सेड वाज रियली गुड एंड आई फाउंड इट वेरी इनसाइटफुल, थैंक यू सो मच। आई वुड लव टू हैव यू ऑन अनदर टॉपिक सम अदर डे, वी शुड डू दिस, वी शुड डू वुमेन्स हेल्थ कंप्लीटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा, और ऐसे और कौन से गेस्ट हैं जो आप चाहते हो कि हम लेके आए, क्योंकि आप अगर हमें बताएंगे कमेंट्स में तभी हम और बेहतर बन सकते हैं। बिफोर यू लीव, यू नो कि ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करना है जिसकी लाइफ में इस एपिसोड को सुनने के बाद एक पॉजिटिव आइडिया या पॉजिटिव चेंज आएगा। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।